فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں عجیب، وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانی ہے. ہائی لائٹ کریں جو آپ پر میں اس وقت پڑھ رہا ہوں. اولڈ ڈیٹڈ بک، 1400 سال پرانی کتاب، اساطیر اسطورت ان کی جمع، فیبریکیٹڈ کہانیاں جس کو فوک ٹاکس کہتے ہیں، لوک باتیں، کہانیاں، یہ کیا کچھ ہے. کا یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو وہ اپنے سر لے رہے ہیں. آپ اور میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کتاب کی بات کرتے وقت ایسے لگتا ہے کہ غصہ آتا ہے جب لوگ خود کو بڑا سمجھیں. اور آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا، اللہ کا خوف نہ ہونا، اللہ کی پرواہ نہ رہنا، اسی طرح خواہش نفس کے پیچھے پڑنا، یہ انسان کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے سے روکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 نجات دینے والی چیزیں ہیں، وہ کون سی؟ اللہ کا خوف ہونا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. یعنی یہاں اس وقت سب کے بیچ میں تو بھی ہم اللہ سے ڈریں، اور اکیلے میں گھر میں رات کو ہوں تو بھی اللہ سے ڈریں. پھر خوشی اور غم میں حق کی بات کرنا، آپ غم چل دیں، خوشی ہیں، حق کا ساتھ دیں. اور تیسری چیز، خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنا. یہ نہ کہ ایک اچھے دنوں میں خوب خرچ کریں اور ذرا منی کم ہوئی تو سب سے پہلے تو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑا. پھر آپ نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی بھی 3 ہی چیزیں ہیں. کون سی؟ نمبر 1 خواہش نفس، جس کی پیروی کی جائے. پھر وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، سٹنچینس. اور تیسرا، آدمی کی خود پسندی کی عادت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے، اور پھر اپنے آپ سے کہ نفس کے غرور سے بچنا ہے. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن دونوں کو دو طرح سے لگتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے، کچھ کو اچھا نہیں لگتا. فرق کس بات کا ہے؟ اس کو پڑھنے کا انداز ہے. جب آپ اس کو عمل کی کتاب سمجھیں گے نا تو آپ کو یہ اچھا لگے گا. اور ایک اصول یاد رکھیے گا کہ دین کی بات کرتے وقت ہمیشہ بیکورڈ جائیں، پچھلے اسلاف نے کیا کہا، پچھلے دور کے لوگوں نے کیا کہا، اور دنیا کی ترقی میں آگے دیکھیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے. جو لوگ قرآن کو لیٹسٹ ویوز میں پڑھنا چاہتے ہیں، بدلتے وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ کتاب کو بدل دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اس میں اولڈ از گولڈ والا اصول یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں نے اسلام کی بات کے خلاف جو باتیں کی، کل قیامت کے دن اس کا بوجھ لے کر آئیں گے. اور یاد رکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قد مکر الذین من قبلہم، دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور ان کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کو آنے کا بھی گمان تک نہ تھا. آج بھی آپ دیکھیے، سازشوں کی بات ہے نا، جتنا جس ملک میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اتنا اسی ملک میں اسلام پھیلتا ہے. جس نے اسلام کے لیے گڑھا کھودا وہ خود اس میں گر گیا. پھر قیامت کے روز ان کو ذلیل و خوار کرے گا، اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں. امیجن کریں، ساری زندگی سرکش رہے، ریبیلیس، نافرمان، موت کے فرشتے کو دیکھ کے اب کیسے بھیگی بلی بنتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں ایسے وقت میں، ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے، یعنی ہم نے کوئی مسٹیک نہیں کی. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے سب کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. کیا پتا چلا؟ عذاب قبر. لکھ لیجیے اس آیت کو. بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں کہاں ہے عذاب قبر کی بات، تو یہاں لکھی ہے. مرتے ہی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ، دین پر عمل کرنے سے دنیا نہیں جائے گی، اپنے آپ کو اس بات کا یقین رکھو. اسی لیے اگلی آیتوں میں فرمایا وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز نازل ہوئی ہے. ہائی لائٹ کریں، کوئی آپ سے بھی تو پوچھ سکتا ہے. صبح گئی تھی آپ پارا سننے، کیا نازل ہوا، کیا سن کے آئیں؟ तो क्या कहेंगे? कुछ ना पूछो, बड़े मुश्किल हुक्म है। एक एक बात सुन के बस अब तो जिंदगी मुश्किल है। ये जवाब आपने देना है, खैर है रही है ना, जब हमारी जिंदगी में आती है उसका हमें फायदा हो जाता है। लेकिन ये तो मानना है कि हम माने ना माने, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो खैर नासिल हो रही है, इसी तरह के नेकोकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर इनके हक में बेहतर है। ये बता दिया, मत कहो कि दीन बनाओगे तो दुनिया बिगड़ेगी। अक्सर मिसाल देती हूँ, सबको उससे फायदा बहुत होता है, आपको भी दे देती हूँ। देखिए, आप कहते हैं कि आप दीन बनाएंगे, अल्लाह कहता है आप दीन के लिए काम करेंगे ना, आपकी सबसे पहले दुनिया बनेगी। इसकी मिसाल समझिए, हम सब इस रूम में हैं, हमें चॉइस दी जाती है कि इस रूम से बाहर चले जाओ या उस मेन डोर से बाहर चले जाओ। कुछ लोग कहते हैं बस मुझे इस दरवाजे से बाहर निकाल दें, मुझे यहां से निकाले, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे घुटन लग रही है, मैं तंग हो रही हूं। अच्छा भी जाइए, जो ही आपको इधर से निकाला, सारों को निकाल दिया, आप देखिए यहां तो आप फिर भी रिलैक्स बैठे होंगे। जब आप ये बाहर लॉबी में और आप सारे ही हो, कितनी घुटन होगी, फिर आपको समझ आएगी ओहो यहां तो मैं अच्छी बैठी हुई थी, मैं वहां क्यों फंस गई। लेकिन आपको यहां बैठ के लग रहा था वहां वाले कितने मजे में बातें भी कर लें, फोन भी उठा लें, मैसेज भी उठा कर लें, और उनको सोने का मौका मिले तो सो भी लें। लेकिन आप वहां गए तो दम घुटन। आप में से कुछ अकलमंद लोग थे, उन्होंने कहा नहीं हमें इसकी फिक्र नहीं, हमें बाहर के डोर से बाहर निकाले। अब मुझे बताइए कि जब आपको इस रूम से मेन डोर से बाहर निकालना है, किस रास्ते से निकालेंगे? इसी दरवाजे के रास्ते से निकालेंगे। वो बाहर का डोर आपकी आखिरत है, ये दुनिया है। जो बंदा सिर्फ दुनिया मांगता है ना, वो इधर से निकल के आगे आता है, पढ़ेंगे आगे दुनिया ही तंग हो जाती है। वो मनारदन जिक्री फाइनल मईशतन दन का सूरत आहा में आएगा। लेकिन जो आखिरत मांगते हैं तो दुनिया उनके रास्ते में से गुजरती है। वल्लाह ही ये बात अगर लोगों को समझ आ जाए, सिर्फ दुनिया पाने के लिए दीन लेना शुरू हो जाए। ऐसी जलील होके दुनिया हदीस में आता है, उस बंदे के पास आती है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं तलब, मेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है लो, लेना पड़ेगा, तुम लो, जान छुड़ाओ, इधर निकालो उधर करो, और दुनिया आपके हाथ में आ जाएगी। और जो दुनिया के पीछे भागता है, सारी जिंदगी दुनिया उसको आगे रखती है, इधर भागो इधर जाओ। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करें। जिधर जाके मुस्तकिल तौर पे रहना, चीजें तो वहीं भेजनी है ना। कच्चे घरों में और वक्ती घरों में क्या रहना, इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का, हमेशा क्याम की जन्नत है, जिनमें वो दाखिल होंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां वो सब कुछ है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। ये जज़ा देता है अल्लाह मुत्तकियों को। दुआ कीजिए अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, इन मुत्तकियों को जिनकी रूहें पाकीज़गी की हालत में जब मलाइका कब्ज करते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने अमाल के बदले। पीछे क्या हो रहा था, फरिश्ते को देखकर जान निकल रही थी गुनाहगार की, तो नेक शख्स को मौत के वो खुशखबरियां मिलती हैं। फरिश्ते आके उनको कहते हैं चलो तुम्हें अल्लाह बुला रहा है। अब आपने सारी जिंदगी अल्लाह को खुश किया तो आप तो पहले ज़ेरे लब मुस्कुराएंगे, अच्छा जी अल्लाह मुझे बुला रहा है, माशाल्लाह बस आ गया वो दिन जिसके इंतजार में थी। आप सोचिए जरा, हमारी मौत का वक्त और हमारे फरिश्ते हमें कहें कि चलो तुम्हें अल्लाह बुला रहा है, तुम्हारा बुलावा, हमारे पांव जमीन पर टिकेंगे? हम कितना खुश होंगे उस दिन। लेकिन शर्त तकवा, बचते बचाते इस दुनिया से गुजर जाए। और अगर ये नहीं है तो मौत का नाम सुनकर दिल बैठने लगेगा। ए नबी, अब जो लोग के इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा और क्या बाकी रह गया है कि फरिश्ते ही आ पहुंचे या तेरे रब का कोई फैसला सादिर हो जाए? इस तरह की ढिटाई इनसे पहले भी बहुत से लोग कर चुके हैं। फिर ये जो कुछ इनके साथ हुआ, इन पर अल्लाह का जुल्म ना था, इनका अपना जुल्म था जो खुद इन्होंने अपने ऊपर किया। इनके करतूतों की खराबियां आखिरकार इनकी दामनगीर हुई और वही चीज इन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक करते रहे थे। वही होता है जिसका डर है, उर्दू में आप कहते हैं ना, वही हुआ जिसका डर है। जो लोग इस दुनिया में अल्लाह को नाराज करेंगे, कल उनके साथ वही होगा जिसको उनको डर था। इमेजिन करें, चंद सेकंड के लिए आंखें बंद करें और खुद से पूछें, अगर मैं इसी हालत पे मर जाऊं जिस पे मैं अब हूं, यानी जो मेरे हालात हैं, जो मेरे तौर तरीके हैं, जो अल्लाह से ताल्लुक है, जो नमाजों से मेरा मामला है, जो अल्लाह की शरीयत से मेरा ताल्लुक है, अगर इसी हालत पे मैं मर जाऊं तो मेरा अंजाम क्या हो? तय्यबीन हूं या खबीसीन में से हूं? सबसे पहले इंसान अपने आप को पाक करे, हर गंदी सोच ख्याल बात लुक में से पाक कर ले, क्योंकि मौत किसी वक्त भी आ सकती है। और याद रखिए, डेथ इज नॉट द लेवलर। लोग कहते हैं ना, डेथ इज लेवलर, लेवल पे कर देगी, हर एक मरने के बाद एक जगह जाएगा। अगर मौत सबको एक लेवल पे कर देती तो और क्या चाहिए था, मरते मट्टी बनते खत्म। मौत के बाद मेरा आपका असल स्टेटस बनेगा। आप इसको यूं सोचिए कि शादी से पहले भी लड़की का स्टेटस होता है, पेरेंट्स के साथ चलता है, असल उसका स्टेटस कब बनता है, शादी के बाद। अच्छे अमीर घर का शौहर मिल जाए तो उस लड़की के भी अच्छे दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बात है माँ बाप के घर में बहुत दौलत होती है, उस मियाँ के साथ बस गुजारे का मामला होता है। साफ पता चल जाता है इस औरत का शौहर गरीब है। नतीजा क्या निकला? स्टेटस वही है जो आपका बाद में बना। आप इसी को समझे, ये दुनिया हमारा मैका है, हम सब यहाँ बस एक लेदे पे चल रहे हैं, असल मेरा आपका स्टेटस हमारी आखरत है। आगे सूरह वाकिया में पढ़ेंगे, हाफिजतुर राफिया, ऊंचों को नीचा और नीचों को ऊंचा करेगी। अल्लाह के नबी अपनी अजवाज को कहा करते थे कि उठो अमल करो इबादत करो, रुब्बा कासियात नारियात, कितनी ही कपड़े पहनने वालियां क्यामत के दिन बरहना होंगी। मतलब ये था कि आज शोहर वालियां हो, कल तुम बगैर शोहर वाली ना बन के जाना। आज अल्लाह ने तुम्हें नबी की बीवी बना दिया, शुक्र करो, कल पता चले कि तुम अल्लाह की रहमतों से निकल चुकी हो। तो अपने लिए हमेशा एक क्राइटेरिया रखिए कि आखरत की कीमत पे मैंने दुनिया नहीं लेनी। बस सिंपल सी बात है, दुनिया उसके अलावा मिलती है मिल। और यकीन करें, जिस दिन आप ये यकीन कर लेंगे ना कि मुझे आखरत नहीं बेचनी, तो उस दिन आपके ज्यादा दुनिया आएगी। जितना ज्यादा आप अपनी जात को साफ करते जाएंगे, आपको अल्लाह ताला दुनिया भी देगा और आखरत भी इंशाअल्लाह ताला देगा। इसीलिए फरमा दिए कि ऐसे लोग ऐसी बातें करते रहे, अपने ऊपर अपनी खराबियों को देख लें। इसी तरह मुशरिकीन का एक बहाना, इसको हाईलाइट कीजिए, बड़ी अहम आयत है। आज भी बहुत सारे लोगों का यही मसला है। क्या वकाल अल्लज़ीन अशरकु लौ शा अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शय। ये मुशरिकीन कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी और की इबादत करते, और ना इसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे, तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? क्या पता चला, क्या करें, अल्लाह ही नहीं चाहता। आज भी लोग ढिठाई के साथ गुनाह करते हैं, जुर्म करते हैं, और कोई पूछे क्यों किए, किस तरह हो गया, कहते हैं अल्लाह ने नहीं रोका, अल्लाह ने नहीं चाहा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर एक दफा अल्लाह के नबी सल्लम गए, तो आपने अच्छे बाप होने के नाते से उनको नसीहत की फातिमा और अली को कि रात को उठ के तहज्जुद पढ़ा करो। हजरत अली इस वक्त किसी मूड में होंगे, कहने गए अच्छा अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म होगा तो उठा लेगा। यानी मतलब यह था कि अल्लाह ने नहीं चाहा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अल्लाह के नबी ने अपनी रान पे हाथ मारा, और कुरान की एक आयत है जिसमें आता है कि इंसान बड़ा झगड़ालू है, वो आयत पढ़ी और आपने कहा कि इंसान अल्लाह के मामले में झगड़े करता है। यानी तुम खुद ही नहीं उठना चाह रहे तो अल्लाह पे डाल रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे नहीं उठाता। तो आज बहुत सारे लोगों ने गुनाह का ये सर्टिफिकेट रखा हुआ, अल्लाह ने नहीं चाह, रोक लेता, मना करता। तो समझ लीजिए इस बात को कि अल्लाह की रजा और चीज है और उसकी इजाजत और चीज है। एक है अल्लाह की इजाजत, इजन, परमिशन, और एक है उसकी रजा। यानी इंग्लिश में समझ लीजिए, किसी चीज की परमिशन मिल जाए या किसी चीज को अप्रूव किया जाए, क्या ये दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल एक जैसी चीजें नहीं है। परमिशन तो आप दे ही देते हैं, कर लो जो करना है आपकी मर्जी। अप्रूवल आप कब देते हैं? जब आप उस काम से खुश भी होते हैं। मसलन इसको एक मिसाल से समझिए कि कुछ लोग इम्तिहान के कमरे में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट है। अब वो स्टूडेंट आ गया, एक एग्जामिनर आके उसको चेक कर रहा है। वो स्टूडेंट अपने पेपर में अलिफ लिखे, बे लिखे, इंग्लिश लिखे, उर्दू लिखे, हिस्ट्री लिखे, गाने लिखे, फिल्में लिखे, उसको इजाजत है? ये है इजाजत? उसको कोई एग्जामिनर जो वॉच कर रहा है आके ये नहीं कहेगा सही जवाब लिखो, गलत क्यों लिख रहे हो। लेकिन जिस दिन उसका पेपर आगे एग्जामिनर के पास जाएगा, तो क्या ये परमिशन आप उसकी अप्रूवल का जरिया बनेंगे, उसको फर्स्ट करार देंगे? यही फर्क है। बहुत सारे लोग इस फर्क को भूले हुए हैं। हर काम इस दुनिया में अल्लाह की रजा से नहीं होता, अल्लाह उस पर राजी नहीं होता, उसकी मशीयत पे होता है। अल्लाह हमें रोकता नहीं है क्योंकि उसने हमें इख्तियार की आजादी दी है, लेकिन लोग जुल्म करते हैं। अच्छा, मजे की बात, गुनाह करके कहते हैं कि अल्लाह ने नहीं चाहा, तो फिर क्या करते हैं? तो नेकियों पे फिर अजर क्यों मांगते हैं आप? अल्लाह ने चाहा नेकी हो गई, जैसे अल्लाह ने चाहा तो गुनाह हो गया। आपको गुनाह पे सजा नहीं मिलनी चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह नहीं रोका, तो नेकी पे जजा क्यों मिले? अल्लाह ने करवाई, आपने क्या किया? तो ये सोचने समझने की बात है, हम जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। बस लोग तकदीर का सहारा लेते हैं, मेरे नसीब में था। मसा एक शख्स है, आप देखिए कि रमजान है और वो फिल्म देख रहा है। कोई कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती रोजे की हालत में या रमजान के दिनों में ये क्या वक्त जाया कर रहे हो? कहता है, मेरी किस्मत में था, अल्लाह ने रख लिखा था, मैंने इसलिए देखी। अब कोई अक्लमंद उसका कान पकड़ के पूछे, ये बताओ जब तुमने नहीं देखी हुई थी, तुम्हें किसने बताया कि अल्लाह ने लिखा हुआ इस वक्त फिल्म देखो? और तुम मजबूर हो गए कि हाय अल्लाह ने इस 11 से 2 बजे तक लिखी हुई है, आपको करने से पहले तो अल्लाह ने नहीं बताया। तो ये सिर्फ धोखा है। कभी गुनाह करके अपने आप को ये झूठी तसल्लियां ना दे कि अल्लाह के हुक्म से हो गया, अल्लाह के हुक्म से नहीं होता। इसीलिए फरमाया, ऐसे ही बहाने इनसे के लोगों ने भी बनाए, तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा भी कोई और बात है? कोई और बात की भी जिम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके जरिए से सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। अल्लाह हमें भी बचा ले। फमिनहु मन हदल्लाह व मिनहु मन हक्कत अलैहि दलाला। इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई, फिर जरा जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका। ए नबी, तुम चाहे इनकी हिदायत के कितने ही हरीस हो, मगर जिसको अल्लाह भटका दे फिर इसे हिदायत नहीं दिया करता, और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। कैसे? नालायक स्टूडेंट की तरह। ऐसे लोगों की मदद अल्लाह कभी नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं, हिदायत सिर्फ उसको मिलेगी जो खुद तड़पेगा, जो रोएगा, जो परेशान होगा। तो गाइडेंस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुबहान ताला। गिफ्ट किसको मिलेगा? जो डिजर्व करेगा। मैंने हिदायत नहीं मांगी, मुझे नहीं मिलेगी। आपने मांगी, आपको मिल गई। या आपका इस किताब को थाम लेना आपकी मांगी हुई दुआ की कबूलियत की अलामत है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हिदायत के लिए अल्लाह से तड़पे। सोना मांगे ना मांगे, चांदी मांगे ना मांगे, हीरे मांगे ना मांगे, अल्लाह से हिदायत मांग ले। क्यों? क्योंकि हिदायत के साथ दुनिया की जो नेमत मिलती है ना, वो रहमत बन जाती है, और हिदायत के बगैर जो नेमत मिलती है ना, वो जहमत और आजमाइश बन जाती है। बस आपको औलाद मिल गई, लेकिन औलाद की सही तरबियत करने की हिदायत नहीं मिली, गाइडेंस ही नहीं थी। गरीब लोग कहते हैं, हमें खुद नहीं पता था बच्चों को कैसे पालते हैं। अब वो क्या, वो बच्चे आंखों का नसूर बन गए, खुद भी तो देर से आए ना। तो लिहाजा हिदायत पहले ले, फिर उसके बाद दूसरी चीजें मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर के साथ वो सारे मामलात को हमारे सामने रखेगा।